पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, जी सर, आपको कहीं घूमकर आना चाहिए। वैसे भी आपको काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। आप घूमकर आएंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए, मैं रूम में ही रहूंगी और कल की मीटिंग के लिए और अच्छे से तैयारी कर लेती हूँ, जिसकी वे डील हमें ही मिले। दिशा की बात सुनकर देवांश को काफ़ी गुस्सा आता है। कहाँ वे इस लड़की को घुमाने की बात कर रहा है और कहाँ ये लड़की फालतू की बात लेकर बैठ गई। बस यही वजह है जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपनी गुड गर्ल पर गुस्सा आ जाता है। चैप्टर 102। अब आगे। लेकिन फिर भी वे अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपनी कड़क और रौबदार आवाज़ में बोला, मिस दिशा, क्या आप चाहती हैं कि इस शहर में मैं अकेले अपने बॉडीगार्ड्स के साथ घूमने निकलूं? मीटिंग की चिंता आप मत करिए, वे डील हमें ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जो देवांश सिंघानिया से उसकी चीज़ों को छीन सके। अगर देवांश सिंघानिया की नज़र उस चीज़ पर पड़ गई तो वे चीज़ हमेशा के लिए देवांश सिंघानिया की होकर रह जाती है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए आप इस फाइल को रूम में रख कर आइए, क्योंकि मेरे साथ इंदौर घूमने आप भी चल रही हैं। वैसे भी आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट्स हैं और आपको मेरे साथ हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी भी वक्त आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जल्दी जाइए और इस फाइल को रखकर जल्दी से आइए, क्योंकि मुझे किसी का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। देवांश की बातों को सुनकर अब दिशा चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब उसे ना चाहते हुए भी देवांश के साथ जाना ही पड़ेगा, इसलिए वे रूम में फाइल रखने चली जाती है और मन ही मन देवांश को भला बुरा भी बोलने लगती है, क्योंकि उसे सच में कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं था। वहीं दिशा को जाते हुए देख देवांश अपने मन में बोला, गुड गर्ल, तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी मैं तुम्हें उतना ही खुद के करीब लेकर चलाऊंगा। इतना बोल वे एक डेविल स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर में दिशा फाइल रख वापस आती है, जिसे देख देवांश दिशा को लेकर होटल के नीचे अपनी कार में बिठाकर इंदौर घुमाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कॉलेज में रोहिणी नाटक कंपटीशन के लिए फॉर्म भर दिया था। वे परी को भी किसी न किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म भरने के लिए बोल रही थी, पर हमारी आलसी परी से कहाँ इतनी मेहनत होने वाली थी, इसलिए उसने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया, जिसे देख रूही हार मानते हुए परी को लेकर कैंटीन में आ जाती है और पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर खाने लगती है, जिसे देख परी बोली, रूही, तू ये सब खाना भाई के सामने कभी भी मत खाना। अगर भाई ने तुझे ये सब खाते हुए देख लिया ना, तो वे तुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाने देंगे। वे तुझे सिर्फ उबली हुई सब्जियां ही खिलाएंगे। परी की बात सुनकर रूही को उस होटल रूम वाली बात याद आ जाती है, जब रुद्र ने सच में उसके लिए उबली हुई सब्जियां ही ऑर्डर की थीं, जिसे याद कर रूही के गले में खाना अटक जाता है और वे खांसने लगती है, जिसे देख परी उसे पानी पिलाते हुए बोली, रूही यार ध्यान से। रूही परी के हाथ से पानी ले पानी पीते हुए गुस्से में बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जब देख रही है कि मैं खा रही हूँ तो तुझे उस शैतान के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी वे शैतान होता कौन है मुझे उबली हुई सब्जियाँ खिलाने वाला? मुझे जो मन करेगा मैं वे खाऊंगी। वे कौन होता है मेरे खाने पीने पर रोक लगाने वाला? इतना बोल वे गुस्से में पिज्ज़ा के बड़े बड़े स्लाइस को चबा चबा कर इस तरह से खा रही थी जैसे वे पिज्ज़ा न होकर रुद्र हो, जिस पर वे अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। वहीं रूही को ऐसा करता हुआ देख परी मुस्कुरा देती है। तभी रूही का फ़ोन बजता है, जिसे देख रूही परी से कहती है, परी देखना किसका फ़ोन है। जिसका भी फ़ोन हो बोल दे कि मैं इस टाइम किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना सबसे फेवरेट काम इस टाइम कर रही हूँ, पिज्ज़ा और बर्गर खाने का काम। इतना बोल वे मुस्कुराते हुए फिर से अपना पिज्ज़ा और बर्गर एंजॉय करके खाने लगती है। वहीं परी रूही की बात सुनकर ना में अपना सर हिलाती है। फिर रूही का फ़ोन उठा, जैसे ही कॉल रिसीव करने वाली होती है वैसे ही फ़ोन करने वाले का नाम देख उसके हाथ अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पर शैतान लिखा हुआ था, जिसे देख परी को समझते देर नहीं लगती थी ये उसके शैतान भाई का ही फ़ोन है। जिसे देख परी रूही को उसका फ़ोन वापस करते हुए बोली, रूही ये ले अपना फ़ोन और तू खुद बात कर ले, मुझे इन सब में नहीं फंसना। परी की बात सुनकर रूही भी आराम से मुस्कुराते हुए फ़ोन ले लेती है और जैसे ही वे भी कॉल रिसीव करने वाली होती है वैसे ही अपने फ़ोन पर रुद्र का फ़ोन देख उसकी मुस्कुराहट पल भर में ख़त्म हो जाती है और वे उसके चेहरे पर डर नज़र आने लगता है। वे अपना पिज्ज़ा का टुकड़ा वापस से प्लेट में रखते हुए अपने मन में बोली, अब ये शैतान मुझे क्यों कॉल कर रहा है? नहीं, मैं कॉल नहीं उठाऊँगी। रूही ने इतना सोचा ही था कि कॉल कट जाता है, जिसे देख रूही खुश हो जाती है और एक चैन की सांस लेती है। मगर वे अभी पूरी तरह से खुश हो पाती तभी उसका फ़ोन दोबारा बजने लगता है, जिसे देख रूही डर के मारे अपना थूक निगलते हुए धीरे से बोली, ये शैतान मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है? जब एक बार कॉल नहीं उठाया तभी उसे समझ जाना चाहिए कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन यह है कि मुझे बार बार कॉल किए ही जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? इतना बोल वे सोच में पड़ जाती है। वहीं परी जब देखती है कि बार बार फ़ोन बजने के बाद भी रूही कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो वे रूही को थोड़ा डराते हुए बोली, रूही, अगर तू इसी तरह भाई का कॉल इग्नोर करती रही ना, तो भाई को देर नहीं लगेगी यहाँ कॉलेज आने में। और अगर भाई एक बार यहाँ आ गए और तुझे यहाँ पर ये सब खाते हुए देख लिया, तो उसके बाद भाई तेरी क्या हालत करेंगे ये मुझे भी नहीं पता। और तुझे मालूम है ना, भाई के सामने कोई कुछ बोल भी नहीं पाता, इसलिए मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर तू नहीं चाहती कि मेरे शैतान भाई का गुस्सा तेरे ऊपर दोबारा फूटे, तो जल्दी से उनका कॉल रिसीव कर ले। परी की बात सुनकर रूही सच में काफी डर जाती है और अपने हल्के कांपते हाथों से कॉल उठा उसे रिसीव करते हुए अपनी धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, हेलो। रूही ने इतना बोला ही था कि उधर से रुद्र की गुस्से की भरी सर्द आवाज रूही के कानों में सुनाई देती है। रूह, इतनी देर से तुम क्या कर रही थी, किसके साथ थी और मेरा कॉल उठाने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मुझे सच सच सारी बात बताओ। अगर तुमने कोई भी बात झूठ बोली तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा।
रुद्र का इतना बोलना ही था कि रूही की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि रुद्र ने जिस टोन में उसके बात की थी वे उसे डराने के लिए काफी था। वे शिक्र मना रही थी कि इस समय रुद्र उसके सामने नहीं है, वरना वे उसकी क्या हालत करता ये वे सोच भी नहीं सकती थी।